नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत लगभग 2,585 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना है। इससे लघु जल विद्युत क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगा।
एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई है जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से।
सरकार ने टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 के संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये संशोधन बकाया उपभोक्ता शुल्क के मामलों में एक संरचित रिकवरी तंत्र प्रदान करता है। इसे टोल संग्रह डिजिटल प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपभोक्ता शुल्क की कुशल और पारदर्शी वसूली सुनिश्चित करना भी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 निर्धारित और विशेष उड़ानें संचालित करेंगी। दोनों एयरलाइंस जेद्दा और मस्कट के लिए अपनी नियमित सेवाएं जारी रखेंगे, जिनमें भारत और जेद्दा के बीच 16 उड़ानें शामिल हैं। कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर कल ईरान द्वारा मिसाइल हमले किए गए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कंपनी ने बताया कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिकों, सैनिकों और सुरक्षा अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें भारत और ईरान के बीच टकराव की बात कही गई है। तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है और नागरिकों से सोशल मीडिया पर इस तरह के निराधार दावों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने उन दावों को भी फर्जी बताया है जिनमें कहा गया है कि ईरान ने उसके 22 जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पिछले साल मणिपुर में असम राइफल्स ट्रक पर हमले के मामले में प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए आतंकवादी संगठन के 3 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। इस हमले में अर्धसैनिक बल के 2 जवान शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर दर्शन और आरती में भाग लिया। राष्ट्रपति मुर्मू मथुरा वृंदावन भी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रितेश रविनायक को गोवा की पोंडा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। नागालैंड में दाउचिर आई एमचेन कोलिडांग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में पार्टी ने वीरभद्रैया चरंती माठ को बागलकोट विधानसभा सीट से और श्रीनिवास टी दास कार्यप्पा को दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू हो गया है। 9 दिवसीय पर्व को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन के राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर घाटी के शोपिया जिले से जोड़ने वाला वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग मुगल रोड बर्फबारी और बारिश के कारण आज लगातार 4थे दिन भी वाहनों के लिए बंद है। हालांकि पुंछ जिले की सभी प्रमुख सड़कें यातायात के लिए खुली हैं। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के 16वें दौर में आज भारत के आयुष शेट्टी का सामना जापान के युदाई ओकिमोतो से होगा। मुकाबला फ्रांस के पैलेस डे स्पोर्ट्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।